स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, जिस ग्रंथ का अंतिम अध्याय चल रहा है ज्ञान के बाद जैसी भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में भक्त भगवान का अनुग्रह देखता है। कोई भी परिस्थिति, अब उस परिस्थिति को सहना नहीं पड़ता है। साधक अवस्था में जिस परिस्थिति को सहना पड़ता था उसका नाम था तितिक्षा, दुख सुख सहो। अब दुख सुख की सत्ता ही उसके जीवन में समाप्त हो जाती है, अब सहना नहीं पड़ता है। जैसी भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में वह भाव विभोर होता है, हे परमेश्वर तेरी कितनी कृपा है, तेरी कितनी कृपा है। अब वह परमात्मा सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, बस कृपा करने का अंदाज, अंदाज माने तरीका सबके लिए अलग अलग है। किसी को स्वस्थ करके कृपा करते हैं, किसी को बीमार करके कृपा करते हैं, किस अरे भाई बीमार करके। यदि व्यक्ति के जीवन में बीमारी न आवे तो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर लग भी नहीं सकता, ये बताऊंगा। ये भी जान, भोग से विरक्ति हो ही नहीं सकती है। बीमार भाई, बीमारी के बाद ही व्यक्ति के जीवन में भोगों से क्या होता है, वैराग्य आता है। नहीं, जब तक स्वस्थ रहे ना तो सारे विषय भोग मेरी अपनी मुट्ठी में आ जाए। तो भोगों को छुड़वाने के लिए क्या है, एक बीमारी भी बहुत बड़ा क्या है, अस्त्र है। हम अपने ही बताते हैं, सही बताऊं, मैं भी बचपन में थोड़ा बहुत बीमार रहा, बहुत ज्यादा बीमार रहा। यदि शायद हो सकता पूरी तरह स्वस्थ रहा होता तो वैराग्य कभी संसार से होता नहीं। तो संसार से वैराग्य, अभी देखो, अभी आप ही देखो कितना धन वैभव हो जाए, लेकिन जब बीमारी आती है लगता है सब क्षण भंगुर है, सब नष्ट प्राय है, कोई साथ नहीं जाने वाला है, सबसे विरक्ति आती नहीं आती है। तो बीमारी देकर के भी भगवान आपको विषय भोगों से वैराग्य दिलवाते हैं। अब किसी को विवेक देके, किसी को, अरे भाई घर में दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, एक बच्चे को प्यार से समझा दो तो बात मान लेता है। अब प्यार से नहीं समझे तो बच्चे को समझाना तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, डांट के, नहीं अभी पहले थप्पड़ लगता है इनका। अरे भाई पहले थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, पहले प्यार से समझाओ। प्यार से न समझ में आवे तो उसको क्या करना, डांट के समझाना। क्या करना है, डांट के समझाना है। डांट के न समझ में आवे तो तब थप्पड़ लगा के समझाना, और थप्पड़ लगा के भी न समझ में आवे तो जिस वस्तु में उसकी आसक्ति है उस आसक्त वाली वस्तु को ही तोड़ फोड़ देना, नष्ट कर देना। क्रिकेट बच्चा खेलता है, आजकल तो समय बदल गया है, आज तो देखो भारत से किसका है मैच भाई, न्यूजीलैंड साउथ, हाँ तो कई लोग तो मैच ही देख रहे हैं जबकि हमसे कोई मतलब नहीं है आज, लेकिन फिर भी अब हमारे जीवन मैच की ज्यादा महत्व है अथवा सत्संग की, यही पता चल जा रहा है। आप देख लो, सही बता रहे हैं, कई लोग इतने हैं, किसी का भी हो, क्रिकेट क्या हो गया, भगवान हो गया, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। पांच देशों का गेम, अब गेम तो गेम ही है, खेल तो खेल है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन इसको लगता है कि जीत गए तो भारत जीत गया, आसमान की बुलंदी पे पहुंच गया, क्या हो गया भगवान जाने, लेकिन चलो भैया हम क्या करें आप लोग। नहीं, अन्य गेमों में जबकि कोई वैल्यू नहीं करते, बताओ दूसरा कबड्डी वाला आगे निकल जा रहा है, इतने साल से चैंपियन आ रहा है, कुश्ती वाला इतने सालों से चैंपियन भारत बना हुआ है, जबकि वन मैन शो है, यहां तो 11 का सहयोग मिल रहा है, वहां तो अकेले बल पे पूरे विश्व में नाम लिया, लेकिन उसको जानने वाला कोई नाम भी कौन है, कुश्ती वाला ये भी नहीं मालूम है, लेकिन उसका नाम क्रिकेट वालों का नाम, धोनी का नाम एक बच्चे बच्चे के मुंह से सुन लो, क्या बवाल है। अरे वर्ल्ड कप तो भी था, फीफा का, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, हॉकी में बताओ ध्यानचंद इतनी बार, उस समय जिसमें कोई साधन नहीं था, पांच पांच बार लगातार विश्व कप लाए, लेकिन उसकी कोई कीमत है ही नहीं, उसको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। चलो जो भी, हम क्या बताएं, तुम्हारे जीवन महत्व किसकी है, ये तो बात की बात है। यहां हम कहां से विषय आ रहा था, हाँ हाँ, तो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो माँ पहले समझाती है, बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ कर लेगा, नहीं गुल्ली डंडा, एक क्रिकेट का गुल्ली डंडा का एक दूसरा रूप है जान लेना, क्यों भाई, परिष्कृत रूप है, गुल्ली डंडा जानते नहीं जानते हैं, हाँ तो उसी का एक परिष्कृत रूप है, दूसरे फार्म में आ गया है, फार्मेट बदल गया है ना, इसलिए पुराना फार्मेट समाप्त हो गया, नए फार्मेट में गुल्ली डंडा का ही नाम क्या हो गया है, एक तरह से क्रिकेट समझ लेना, उसका फार्मेट बदल गया, तो खेलेगा कूदेगा होगा खराब है, अब पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब है। पहले कहावत है, आजकल नहीं कहावत रह गई है, आजकल तो पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लोगे, लेकिन खेलों के कूदोगे तो एक बार गेम जीत गए तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे सीधे। चलो तो माँ बच्चे को पहले क्या करती है, प्यार से समझाती है, और जब बच्चा प्यार से समझने से न माने तो माँ क्या करती है, डांटती है, यदि आज बैट उठाया तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी पक्का जान लेना, क्या करूंगी, अब दो तेरे को लगाऊंगी, इसी बैट से लगाऊंगी, लगाएगी नहीं धमकी देगी, तो वो होगा डांटना, यदि डांटने से भी बच्चा न मारे तो पकड़ के दो थप्पड़ लगा देवे, और थप्पड़ से भी न माने तो जिस वस्तु से खेलता था, किससे खेलता था, उसी को चूल्हे में मैया जला देती है, ले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी तुम्हारी खेलने की वस्तु और न तू खेलेगा। ऐसे संसार के भी विषय में ध्यान देना, संसार के जिस किसी पदार्थ में हमारा राग बहुत ज्यादा है, हमारा राग है ना बेटे से, पत्नी से, पति से, धन से, तो गुरु रूप में भगवान आकर के हमें प्यार से समझाते हैं, बेटा विश्वास मत करना इस संसार का, ये संसार किसी का आज तक हुआ ही नहीं है तो तुम्हारा कैसे होगा, तो गुरु रूप में ईश्वर आकर के आपको क्या किए हैं, प्यार से समझाए हैं, यदि आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझोगे तो दूसरा क्या मिलेगा, बोलो भाई, डांट। अब आप किससे प्यार करते हो, यदि बेटे से प्यार करते हो बेटा ही आपको आंख दिखाएगा, बेटा आंख नहीं दिखा रहा, ध्यान देना, बेटे के रूप में परमात्मा ही उसके भीतर घुस करके आपको बेटे से डांट दिलवा रहे हैं कि जिस बेटे पे इतना भरोसा करते हो ना, देखो वह बेटा आंख दिखा सकता है, जिस पत्नी अथवा जिस पति के लिए तू दिन रात मर रहा है वह पत्नी अथवा वह पति भी तुम्हें क्या कर सकती है, आंख दिखा सकती है, डांट सकती है, तो पत्नी ने आंख नहीं दिखाया, पति ने आंख नहीं दिखाया, बल्कि परमात्मा ही उसके रूप में आकर के इस पे भरोसा न करो ज्यादा, आसक्ति मत करो, इसके लिए परमात्मा ने ही आंख दिखलाया है, ये भी परमात्मा की कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी है भाई, दूसरी डांटने वाली, हाँ दूसरी डांट, यदि इस पे भी न मानता है, यदि इस पे विश्वास हट जाए ना, और एकमात्र जो विश्वास योग्य है परमात्मा उस पे विश्वास हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस पे भी जब नहीं मानता है तो थप्पड़ खिलवाता है, क्या खिलवाता है, नहीं थप्पड़ खिलाते हैं, अरे बच्चे कितने बाप को मारते नहीं मारते हैं, बच्चे कितने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, पत्नियां कितनी पतियों पे हाथ उठा देती हैं, पति कितना अपनी पत्नियों पे हाथ उठा देते हैं, अरे भाई जिस पे तू इतना भरोसा करता है तेरे को पिटाई भी कर सकता है किसी बात के लिए, तो इसलिए वो विश्वास मत करना, विश्वास के योग्य है तो केवल मात्र क्या है, परमेश्वर है, जगत में आसक्त तुम मत होना। एक कौन सा तरीका है समझाने का, पत्नी नहीं मारा है, पति नहीं मारा है, मारा किसने है, परमात्मा ने ही आसक्ति को हटा करके उसके द्वारा मार खिलवाई है। यदि इस पे भी हमारी वृत्ति न समाप्त होवे, आसक्ति न समाप्त होवे, जो खेलने वाली वस्तु है, कौन सी वस्तु, चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो, उसको परमात्मा रोगी बना देगा, अब आसक्ति कर ले, अथवा उसको मार डालेगा, नष्ट कर डालेगा, उस खेलने वाली वस्तु को ही, चाहे पति होवे हमारी, जिससे आसक्ति ज्यादा होती ना, ध्यान देना है, परमात्मा उसी को समाप्त कर देता है। जिसको हम सोचते हैं को हमारा जीवन भर साथ देगा, जिसपे हमारा पूरा भरोसा बना रहता है, परमात्मा उसी को क्या करा देगा, असहाय अथवा उसी का जीवन ले लेगा, अब भरोसा कर लेगा, न रहेगा बांस और न रहेगी पत्नी, न रहेगा पति, अब भरोसा किस पे करेगा, अब भरोसा किस पे करेगा, मेरे पे तो करेगा ना। तो कल्याण कराने के लिए परमात्मा किसी का जीवन दान भी दे देता है और किसी का जीवन लेकर के भी कल्याण करता ही करता है। इसलिए हर अवस्था में परमात्मा हमारे ऊपर क्या कर रहा है, कृपा ही कर रहा है। लेकिन अनुसंधान रहे, ध्यान देना, बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन अभी यहां आए हैं प्रेमपुरी में, और अभी जाते जाते 500 का नोट रास्ते मिल जाए तो क्या कहोगे, परमात्मा की बड़ी अनुग्रह है। और नीचे गए, जूता गायब हो गया, तो वहां मानते हैं क्या, कृपा, सही बताना, नहीं मानते, हम भी नहीं मानेंगे, आप क्या कहोगे, कोई नहीं मानता है, मानेगा। अरे एक दिन सपने में क्या, मैं गंगा वंगा नहा रहा था, परसों क्या था, गंगा नहा रहा था, सब सामान वान रखा था, और संस्कार रहा होगा क्योंकि अभी गया था ना ओंकारेश्वर, नर्मदा नहाए, नर्मदा के बाद जब वापस आते वक्त एक माई का चश्मा वहीं छूट गया, तो वो बुद्धि में संस्कार रहा होगा, तो कुछ सामान थे, पैसे थे, वहीं छूट गए। अब बाद में कृपा नहीं दिखाई दे रही, 10 जगह खोज रहा हूं, कहां गया, कैसे करूं, ये करूं, खोज रहा हूं, कब खोज रहा हूं, सपने में, जगह तक अच्छा था, सपने ही था, सपने में गायब हो गया। लेकिन फिर भी सपने में भी ये तो सोचना चाहिए था ना मेरे को, कि भाई ये भी कृपा है, ठीक है, हमें नहीं, किसी और को मिला, मिल जाएगा, इससे हो सकता है कि हमारी धन की आसक्ति इससे हट रही है, लेकिन ये सोच नहीं पा रहा है व्यक्ति। तो कहने का भाव है, किसी को धन दे करके, किसी का धन छीन करके, हर रूपों में परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सच्चे पिता हैं, हमारा किसमें भला है वो अच्छी तरह जानते हैं। किसी को नौकरी दे के कल्याण कराते हैं, किसी को नौकरी छीन के कल्याण कराते हैं, मैंने देखा है, कल देखे किसी का विवाह करवा के, किसी का विवाह न करवा, किसी को 2-3 बेटियां दे देंगे, बेटा देंगे नहीं, अच्छा हुआ शादी हुई, अब भगवान का भजन करे, हैं, बहुओं के लाख खाने का अवसर न मिले, बढ़िया है, नहीं बढ़िया है। कुल मिलाकर के हम कहते हैं जिसके यहां बच्चे हैं तो उसके ऊपर भगवान ने बच्चे के रूप में भी कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन जो परिस्थिति जिसके पास होवे उस परिस्थिति में वो भगवान का अनुसंधान करे। तो अभी दुष्टों को मार करके उनके पापों का विनाश करते हैं, इस रूप में परमात्मा कृपा किए, उसमें पूतना, सकटासुर, त्रिंगावर्त और यमलार्जुन नामक 2 वृक्ष थे, इनकी वेदांत परक व्याख्या आपने कल पढ़ ली, याद है थोड़ा बहुत, पूतना हमारे पास भी आएगी, आएगी नहीं आएगी, सबके पास आएगी, स्तनों में विष लगा करके, लेकिन इस संसार की चमक धमक ही उसका क्या है, विष है, हम इस चमक धमक को पीते हैं, इस चमक धमक के भीतर, इस चमक धमक को सत्ता देने वाला उस परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि यदि चमक धमक में से न होकर के सत्ता में चली गई, देखो भोजन 2 हैं, एक भोजन में स्वाद है, दूसरा भोजन में स्वास्थ्य है, हमारी दृष्टि कहां जाती है, तो समझ ले जहर पी लिया, और स्वास्थ्य हमने क्या किया, आजकल जो आ रहे हैं क्या बोलते हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज और क्या है, माइक्रोनी, चाउमीन, ये मैगी, ये सब बताओ, भोजन जहर है कि अमृत है? सब्जी महाराज क्या हुआ, 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर दे दो, घर पे आ जाएगा। हमने कहा क्या 500 रुपए में, आज 500 रुपए में तो सब्जी ले आ लो, तो एक हफ्ते की अपना काम चल जाएगा। नहीं चलेगा क्या, अब पूरे परिवार का चल जाएगा। कितनी भी महंगी सब्जी है, 80 रुपए किलो है तो भी चल जाएगा एक हफ्ते का काम। लेकिन नहीं, 500 का पिज्जा, एक मीटिंग और शायद एक या दो आदमी कितने का होगा, ज्यादा हमें तो बाजार वाला हमने खाए नहीं है क्या बता, लेकिन कोई स्वाद नहीं है। हमने खाया भी एक जगह, किसी ने बना के खिलाया, कोई स्वाद भी नहीं। लेकिन पता नहीं आदमी कैसे पागल पड़ा हुआ है, बस विदेशी डिश है। तो स्वाद में दृष्टि रहेगी तो स्वास्थ्य आपका बर्बाद हो जाएगा, आज यही हो रहा है। यदि दृष्टि स्वास्थ्य में हो गई तो स्वाद क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, गौर हो जाएगा। तो आप दृष्टि स्वास्थ्य में कर लो तो स्वाद अपने आप क्या हो जाएगा। तो पूतना का क्या पीना है, प्रांग तो पीना है, प्रांग माने इस सारे संसार में अस्थि भांति प्रियता का तो पान करना है, उसको ग्रहण करना है। नाम रूप जाति गुंगट दिया को क्या करना है, छोड़ देना है, उसको बहुत महत्व देना नहीं है। यदि ऐसी अवस्था हो जाएगी तो सकटासुर मरेगा। सकटासुर माने क्या हुआ, जन्म मृत्यु का प्रवाह, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वह चक्र आपका समाप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, त्रिंगावर्त सम्मान की एक बहुत भयानक वासना है, वह वासना भी समाप्त होगी। और फिर यमलार्जुन का उद्धार होगा। यमलार्जुन माने जगता, जगता कौन है, राग और द्वेष। ये कहां निवास करते हैं, आपके अपने आंगन में। आंगन कौन है, अंतःकरण। अंतःकरण में रहने वाली जो राग द्वेष रूपी वृत्ति है, जिस वृत्तियों के द्वारा आपका अंतःकरण जड़ बना हुआ है, वह जड़ता भी समाप्त होकर के वह चैतन्य बन जाएगा, मन ही परमात्मा बन जाएगा। राग द्वेष से रहित मन ही क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता, चित्त ही चित्त हो जाता है यदि मन में राग द्वेष न होवे तो। आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। ये साधना की अवस्था है, ध्यान देना, ये केवल भगवान ने मारे नहीं है, आपके अंतःकरण की इसी तरह से साधना चलनी चाहिए। अब भगवान किसको मारते हैं, नित्यम त्रिदश द्वेषी एन च मृत्योर वशीकृत केशी काकः कोपि बराको वको अप्य अशोकम गतो लोकम। कहते हैं त्रिदश द्वेषी, त्रिदश मान हुआ देवता, त्रिदश माने कौन क्या हुआ, देवता, देवताओं पर द्वेष करने वाला, हमेशा द्वेष करता था, कौन है, एक राक्षस था, नित्यम हमेशा द्वेष करने वाला, वह कौन है, केशी, कौन सा है, केशी। केशी का भी एन च मृत्योर वशीकृत, जिसके द्वारा बस में कर लिया गया, केशी नामक दैत्य को जिसने मृत्यु के बस में करके उसका भी उद्धार कर दिया। एक केशी कौन है, आप लोगों ने भागवत सुना ना, कहते हैं केशी नामक एक दैत्य था, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए उसको भेजा, तो केशी किसके रूप में आया था, घोड़े के रूप में आया, बड़े वेग से दौड़ते हुए आया, और जैसे वो हिनहिनाता था ना, तो देवता भी क्या करते थे, छोड़ के भाग जाते थे अपना धर्म वो स्वर्ग, इसलिए उसको त्रिदश द्वेषी कहा गया है। बड़ी आंखें थी, मुख तो वृक्ष का जैसे कोई कोटर, गर्दन मोटी, शरीर इतना विशाल जिसे काले बादल की घटा, चले तो जैसे भूकंप आ जाए। भगवान के पास गया, दुलत्ती मारा, भगवान ने उससे अपने आप को बचा लिया। बताओ इंद्रियातीत परमात्मा को कैसे वो पकड़ पाता। बाद में भगवान ने उसके दोनों पीछे वाले पांव को पकड़ा, अब पकड़ के क्या किया, चारों तरफ घुमाया और घुमा करके पटक दिया, और उसका सियावर रामचंद्र की अभी जय नहीं हुआ यार, जल्दी बात तो दूर फेंक दिया। जब थोड़ा होश आया तो फिर लौट के आया भगवान से, बड़े मुंह फाड़ के खाने के लिए, भगवान अपना हाथ ही उसके मुंह में डाल के इतना विस्तार किए जिसे सांप बिल में घुस जाता है, देखते देखते वह भी मर गया। एक केसी किसके भेष में आया है, घोड़ा किसका प्रतीक होता है, रजोगुण का, रजोगुण का। तो यदि आपके भीतर राग द्वेष समाप्त हो जाएगा तो आपके भीतर एक रजोगुण भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। और ध्यान देना, जब व्यक्ति के जीवन में रजोगुण बढ़ता है ना, तो दैवी संपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। रजोगुण का ही गुण जानते ना, काम क्रोध किसका गुण है, नहीं रज का है, कामना क्रोध लोभ ये सब कहां से आते हैं, रजोगुण के हैं। बुरा संतोष समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, त्याग समाप्त होगा, नहीं समाप्त हो जाएगा, सेवा समाप्त होगा, नहीं सेवा होगा, ये तो सत्वगुण के गुण है ना। तो जब रजोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण क्या होंगे, अभिभूत हो जाएंगे, ढक जाएंगे। तो सत्वगुण के परिचायक कौन है, देवता। सत्वगुण के परिचायक कौन है, देवता। तो देवता रजोगुण जब बढ़ेगा तो रजोगुण बढ़ेगा तो दैवत्व मतलब सत्वगुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भगवान उस ज्ञान का आविर्भाव करके, ज्ञान प्रकट करके व्यक्ति के जीवन में जो क्रिया है, क्रिया माने रजोगुणता है, उस रजोगुणता को भी समाप्त कर देंगे। बहुत कर्म का विस्तार नहीं करेगा, जितना शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यकता होगी उतने कर्म का विस्तार करेगा, क्योंकि अन्य कर्म का विस्तार पाप का ही भागी बनाता है। ये भगवान गीता जी में भी कहे हैं, है ना, निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न अपनोति किल विषम। शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है उतना कर्म करे, व्यर्थ कर्म का विस्तार न करे। तो जीवन में क्या समाप्त हो जाएगा, रजोगुण। और इसी को आगे बता रहे हैं, काकह कोपी, कोई बेचारा बराकह, कोई बेचारा एक कौआ है, काकासुर है। कौन है, काकासुर। एक बेचारा कौन है, बकासुर है। इन दोनों को बेचारे कहे हैं। बेचारे क्यों हैं, जो व्यक्ति दिन रात अनिष्ट कर रहा हो, पाप कर रहा है, वो बेचारा बेचारा है ही नहीं, बेचारा बताओ। भीष्म पितामह बेचारे नहीं है, बेचारा कौन है, दुर्योधन बेचारा है। जो व्यक्ति दिन रात पाप कर्म कर रहा है वो कौन है, बेचारे हैं। ये बेचारे काकासुर और बकासुर को भी भगवान ने मार करके इनको अशोक गतम ऐसे लोक में पहुंचा दिया जहां शोक था ही नहीं, मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति करा दिए। तो काकासुर क्या है, बोलो भाई, कौए का स्वभाव क्या होता है, काव 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 करना, बक 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 करना। तो यदि ऐसी ज्ञान आपके भीतर उद्भूत हो जाएगा तो आपके भीतर भी एक काकासुर है, मालूम नहीं मालूम है, बक 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 लगाए रखते हैं, जिससे कोई मतलब ही नहीं है, दिन रात बोलते रहते हैं, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, मौन हो जाओगे। काकासुर किसका नाम है, बहुत ज्यादा बोलने का नाम। कौन है ये, एक काकासुर बहुतों के ऊपर हावी होते हैं, ध्यान देना, इतना बोलते हैं जिसके बोलने से कोई प्रयोजन निकलता ही नहीं, लेकिन बोले जाते हैं। तो ऐसे काकासुर का भी विनाश हो जाएगा। और दूसरा कौन है, बकासुर। बकासुर किसका प्रतीक है, छल का प्रतीक है, दंभ या छल, कपट का प्रतीक है। है तो कुछ और दिखाता है अपने आप को कुछ, तो ये आपके अंदर ये दंभ भी समाप्त हो जाएगा, आप धर्म ध्वजी नहीं रहोगे। हम लोग तभी क्या होते हैं, धर्म ध्वजी बनते हैं, धर्म का झंडा तो लहराते हैं, इन धर्म अंदर नहीं रहता है। ऊपर से तो हम भक्त बनते हैं, इन अंदर से क्या भरा पड़ा है, अभक्त, कटता, कलमस्ता भरी है। ऊपर से हम दिखावा अच्छा करते हैं, तो इसी का नाम क्या है, बकासुर। इन दोनों को समाप्त कर देते हैं तो बताओ भगवान कृपा है कि नहीं है, तो हमारे भीतर ये राक्षस नहीं है। इसी को अष्टावक्र गीता माया है, अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है, वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम जनम मूक जगालसम करोति तत्वबोधो अयम अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी। कहते हैं वाग्मी माने बहुत बोलने वाले को यह ज्ञान न मूक बना देता है, सारी बोलती सही बता, बंद कर देता। मैं भी बहुत बोलता था बचपन में, बहुत ज्यादा, इतना बोलता था कि लोग जो मेरे पास है उसका सरदर्द हो जाए, होता था। मैं लखनऊ में था, एक हमारी सिस्टर थी जिसमें इंजीनियरिंग करना कर रहा था, तो कभी कभी वहां संडे वनडे के दिन चला जाता था। इतना बक 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 लगाए रखता था, इतना आवाज शोर हुए तो दीदी कहे कि भैया तू सरदर्द कर देता, मौन हो जा। अभी एक बार लखनऊ इसे गया था तो कहा तू वही है जो पहले वाला था। हमने कहा क्या करें भाई, सही बता रहा, अब क्या बोले बताओ, आप लोग चर्चाओं में क्या करें। अभी मैं किसी के साथ गया था अद्वैतानंद जी के आश्रम में, वहां बहुत दो तीन साल पहले, सही बताओ कार में बैठा था, चुपचाप बैठा था, और दूसरे लोग थे भगभग भगवत पूरे रास्ते में इतना बोलते हैं, लगता है कि उनको कहीं माइक दे दिया जाए तो कितना बोलेंगे, प्रवचन करेंगे। सही बताओ, शांति से आदमी यात्रा भी नहीं कर सकता। आप कभी देखना, ट्रेन में बैठोगे तो, कार में बैठेगे तो, बिना मतलब के ही बक 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 लगाए हैं, कुछ न कुछ आपने देखा होगा कि नहीं देखा बता, कोई लेना देना नहीं है। अरे यात्रा कर रहे हो, शांति से यात्रा का आनंद तो लो, लेकिन यात्रा का आनंद भी नहीं लेते हैं, न जाने कहां उनकी चित्त की वृत्ति रहती है। तो वाग्मी बहुत बोलने वाले की बोलती बंद करा देता है। कौन? तत्व ज्ञान, प्राज्ञ, जिसको अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान होता है, मैं विद्वान हूं, उसको क्या बना देता है? जड़ बना देता है। क्या बना देता है? बहुत बड़े विद्वान को भी यह ज्ञान क्या बना देता है? जड़ भरत बना देता है। जानन अपमेधावी लोके जड़वत आचरे, सब कुछ जानता हुआ व्यक्ति संसार में एक मूर्ख की भांति रहना शुरू कर देता है। और संसार के लोग, सही बताओ न, संसार के दौड़ भाग में न रहो न तो आपको मूर्ख ही कहेंगे, नहीं कहेंगे। अभी आजकल तो क्या करें, महोद्योगम, बहुत कर्मठ व्यक्ति को, बहुत दिन रात काम करने वाले व्यक्ति को क्या बना देगा? आलसम, आलसी बना देगा। आलसी माने, आलसी में थोड़ा अंतर है, ध्यान देना। आलसी में क्या होगा कि फल तो चाहता है लेकिन काम किए बिना, और आलसी माने उसको कर्म का विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं समझ में आती, बस काम कर लिया इतना पर्याप्त है आज के लिए, अब बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। ये सब कौन काम करता है? तत्व बोध, तत्व ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति क्या बन जाएगा? गूंगा। क्या बनेगा? गूंगा बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? जड़। जड़ माने जड़ की तरह रहेगा, अंदर से चेतन रहेगा। और आलसम, आलस माने यहां इतने संतोषी, बहुत ज्यादा कर्म का विस्तार नहीं करेगा, अपने आप में बैठ जाएगा। इसलिए बुभुक्षु भी, इसलिए भोगों को चाहने वाले लोगों ने इस ज्ञान का त्याग कर दिया है, इस ज्ञान को कोई पसंद करता नहीं है। अतः त्यक्तो बुभुक्षु भी, जो भोग चाहने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने इस ज्ञान को छोड़ दिया है, इस ज्ञान को पकड़ना नहीं चाहते। कौन है? हम तो, आपने सुना नहीं सुना है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक है कि यात्रा कर रहे थे, कहीं नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, तो कहते एक सिद्ध महात्मा मिले। सिद्ध माने जानते हैं? नहीं जानते हैं। आज की भाषा में तो जिसके पास गाड़ी बंगले बढ़िया वो सिद्ध है, लेकिन वो नहीं सिद्ध, अपने आप में स्वरूप में सिद्ध महात्मा, नर्मदा किनारे अपनी मस्ती में रहा करते थे। तो अखंडानंद जी महाराज के साथ कई भगत भी थे, उसमें एक सेठ भी थे, कहा महाराज जी भगवान के दर्शन हो जाएंगे क्या? लेकिन विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के, अंतःकरण को साफ करो तब दर्शन होंगे, यह करो तो दर्शन होंगे, बिना किसी शर्त के भगवान का दर्शन मैं करना चाहता हूं। और जो सिद्ध महात्मा थे उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, प्रयास हम लोग करते हैं। तो कहा चलो सब लोग दर्शन भगवान का पाने के लिए कीर्तन करते हैं, कीर्तन करना शुरू कर दिया, रात 1 बजे तक कीर्तन करते रहे। 1 बजे के बाद कहा भाई बंद कर दो कीर्तन, भगवान प्रकट हो गए हैं, दर्शन देना चाहते हैं, अब उस भगत से पूछ लो कि वो मेरा दर्शन करना चाहता है नहीं करना चाहता। कहा महाराज जी दर्शन करने के लिए ही तो इतना उद्यम किया, प्रयास किया, तो दर्शन क्यों नहीं करना चाहूंगा? तो कहा दर्शन का ये फल भी समझ लेना, दर्शन मेरा दर्शन हो जाएगा तो फल क्या होगा कि लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे, हो सकता है तुम्हारे तन पे कपड़े पहने हो या नहीं पहने हो इसका भी तुम्हें होश, न रहे, सुखदेव वाली स्थिति हो सकती है। अपनी मौज में ये ध्यान ना, कपड़े उतारे नहीं है हमारे महापुरुष महावीर जैन ने, कपड़े नहीं उतारे हैं। उनके कपड़े उनके तन से कब उतर गए उनको एहसास ही नहीं हुआ। उनका देह भाव इतना समाप्त हो गया था कि शरीर के खाने का, सोने का, और इसलिए कहते एक करवट सोते थे तो उससे करवट ही सो जाते थे, करवट भी नहीं बदलते थे। उनका देहाभाव इतना समाप्त हो चुका था। कपड़े उतारे नहीं है, आजकल उतार उतार के प्रयास करते हैं, ये उतारे नहीं है। उतार कर कोई जैन नहीं बनता है। कपड़े कब उतर जाए आपको होश ही न रहे। जैसे शराबी व्यक्ति कि पैंट कहां उतर जाती, शर्ट कहां उतर जाती पता नहीं चलता है, तो उस ज्ञान की मस्ती में मस्त व्यक्ति को दीन दुनिया की कोई खबर रहती नहीं। हो सकता ऐसी अवस्था देख करके लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके, अब बताओ दर्शन करना कि नहीं करना है। कहा महाराज जी थोड़ा विचार करने दो, थोड़ा सोचा तो कहा इतना बड़ा सम्मान अभी मिल रहा है, मैंने सोचा था भगवान के दर्शन होने के बाद पूरी मुंबई मेरे गले में जयमाला डालेगी, महाराज जी की जय जयकारी बोलेगी, ये तो दर्शन का फल उल्टा ही हो रहा है। तो कहा महाराज जी अभी दर्शन नहीं करना है, ये दर्शन तो 80-90 के बाद सोचेंगे, अभी नहीं। तो बताओ उस ज्ञान की मस्ती के बाद आप कैसी स्थिति हो जाएगी, अवधूत स्थिति हो जाएगी, कुछ भी होता रहे आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कोई मर रहा है तो, कोई पैदा हो रहा है तो, फायदा नुकसान होए तो, लाभ होए तो, न हर्ष न शोक, हर अवस्था से अपनी एक मौज वाली अवस्था रहेगी। तो ऐसी अवस्था हो जाती है ज्ञान के बाद, इसलिए लोगों ने इस ज्ञान को क्या किया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। इन दोनों का तात्पर्य यहां लेना, महोद्योगम महाकर्मठ करने वाला कौन है, एक केशी नामक राक्षस है, रजोगुण का प्रतीक है। परमात्मा उस रजोगुण को भी समाप्त करके उतना काम करवाएंगे जितनी उसकी आवश्यकता हो। हमने तो नहीं, एक महात्मा के बारे में मैं सुना मात्र हूं, अभी उनके एक बेटे जीवित हैं पंजाब ओ हरियाणा में, ओ हरिद्वार गए, पता नहीं पहले वैद्य का काम करते थे, हरिद्वार गए, हरिद्वार से वापस आए, उनको कौन महात्मा मिला, कैसा मिला, बस दिन भर के लिए जितनी आवश्यकता है खाने की उतना काम करें, इसके बाद भगवान का भजन करना और कुछ नहीं करना है। उनका बेटा काम करना चाहे, जिसे मान लो फायदा आया 100 रुपए का, बेटा 5 दिन भजन करो, 100 रुपए खत्म हो जाए फिर काम करने के लिए जाना। और उनकी एक लड़की भी महात्मा बनी बात, उनकी एक बेटी भी महात्मा बनी, वो खुद महात्मा रहे, लेकिन कहा कि हमने अपने बाप और भाई से, वो बहन से कुछ सीख नहीं पाया। आज भी आते हैं, एक मेघराज हैं पानीपत में हैं, हमने कहा कम से कम आपने ऐसे दो महापुरुषों के दर्शन तो किए जो आपके घर में ही रहे, हमें तो आजकल ऐसे महापुरुषों के दर्शन ही नहीं दुर्लभ हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। कम से कम आपने उनके साथ रहे, उनकी सेवा किए, इतनी कम उपलब्धि है क्या। तो कहने का अभाव है, कर्म का उतना ही विस्तार करता है जितने विस्तार की आवश्यकता होती है, अन्यथा कर्म का विस्तार अपने आप छोड़ देता है, प्रपंच उसका समाप्त हो जाता है। इसीलिए गीता जी ने कहा है शारीरम केवलम कुरुवन, शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है उतना कर्म करेगा, तो उतना कर्म करते हुए उसको कोई पाप लगेगा नहीं। काकासुर मरेगा माने बहुत बोलती बंद कर लेगा, बहुत ज्यादा बोलना बंद हो जाओगे, मौन हो जाओगे। और दूसरा कौन है, बकासुर, बकासुर माने क्या, इसका प्रतीक है छल का, कपट का, दंभ का प्रतीक है। अब कपट भी किसके लिए करोगे, जहां दो की सत्ता होती है वहीं कपट किया जाता है, जब एक ही सत्ता बची तो कपट भी होए तो किसके लिए होए। इसलिए बकुला कैसे छल का प्रतीक है जानते ही हैं आप लोग, हाँ, लगता है बड़ी साधना कर रहा है, बहुत बड़ी साधना में लगता है, एकदम हिलता जुलता नहीं है, लेकिन जैसे मछली देखेगा ऐसी अवस्था हुई है। भगवान राम लक्ष्मण के साथ जा रहे थे, कहां पंपासर सबरी से मिलने हैं, किससे सबरी से मिलने हैं, तो पंपासर में एक क्या था कबूतर नहीं बक कौन बकुला था, तो बकुला एक पांव पे खड़ा एकदम समाधि लगाए बड़े धीरे धीरे पांव रख रहा है, तो राम ने लक्ष्मण से कहा पश्य लक्ष्मण पंपायाम वको परमो धार्मिक है, हे लक्ष्मण देखो तो यह बकुला इस पंपा सर्किट तालाब की महत्ता के कारण बहुत बड़ा धार्मिक है। अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़ करके भी यह अहिंसक बन गया है। स्नेही स्नेही पदम धत्ते प्राणी नाम बध शंकया, किसी प्राणी की हमारे पांव के नीचे दबकर के हत्या न हो जाए इसके कारण बहुत धीरे धीरे पांव रख रहा है। किसने बोला? किससे बोला? लक्ष्मण से। किसको देख के बोला? बकुला को। तो वहीं तालाब में एक मछली थी। तालाब में कौन थी? मछली। तो मछली अपनी गर्दन उठा के बोलती है, वह कह क्यों वर्णते राम, हे राम इस बकुले के बारे में क्या तुम चर्चा करते हो? ए ना हम निष्कुली कृतम, जिस बकुले के कारण मैं खानदान से रहित हूं, मेरा कोई परिवार है ही नहीं, सबको खा लिया इसने। सहचारी बिजानियात चरित्रम सहचारी नाम, जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है ना, वह व्यक्ति उसके चरित्र को अच्छी तरह से जानता है। आप तो बड़े दूर रहते हो, इस बकुले को देख करके आपको बड़ा धार्मिक इंसान दिखता है, धार्मिक व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जिसके साथ लंबे समय तक रह ले न, तो कितना धार्मिक है कितना अधार्मिक है, साथ रहने वाला ही साथ रहने वाले के गुण को पहचानता है। इसलिए सहचारी विजानियात चरित्रम सहचारिणाम, जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके चरित्र को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए बकुला किसका प्रतीक है? बोलो भाई। छल कपट दंभ का प्रतीक है। तो आपके जीवन में जैसे ज्ञान का आविर्भाव हो जाएगा तो क्या समाप्त हो जाएगा? आपके भीतर का छल दंभ कपट ढोंग दिखावा आडंबर सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप सचमुच अच्छे महात्मा बन जाओगे। अच्छे महात्मा माने मनसी एकम, लाल कपड़े वाला महात्मा नहीं, मनसी एकम बचसी एकम कर्मण एकम महात्मन है। जो मन में चिंतन आएगा वही आपकी जवान से निकलेगा, और जो जवान से बोलोगे वही अपने जीवन में उतारोगे, वही कर्म करोगे, इसका नाम क्या है? महात्मापन है। दुरात्मा की भावना बकासुर समाप्त हो जाएगा कि मन में रहे चिंतन कुछ, बोले कुछ, करे कुछ। वो हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था ना, क्या नाम है? कालनेमी। तो कालनेमी मन में तो कुछ है, बोलता है कुछ, करने जा रहा है कुछ। आपके भीतर का कालनेमी, आपके भीतर का बकासुर समाप्त हो जाएगा। और दूसरा राक्षस काक माने बहुत बोलना भी बंद कर लोगे, अपने आप में शांत हो जाओगे। आगे बढ़े। गो गोपी गोपा नाम निकरम अहिम पीडियंतम अति वेगात अनघम अघासुरम अकरोत पृथुतर उर्गेश्वरम। भगवान भगवान ने क्या किया? अघासुर नामक एक राक्षस को मार डाला। अघासुर की कहानी आप जानते हैं। भगवान अब वहां से वापस आ गए, कहां? गोकुल से कहां आ गए? वृंदावन। नहीं मथुरा क्यों जल्दी पहुंचे, अभी वृंदावन आएंगे। वृंदावन आए, गाय वो चरा रहे थे, तो एक दिन अजगर के रूप में एक राक्षस आया जिसका नाम क्या था? अघासुर। वो पूतना बकासुर का क्या था? छोटा भाई था। उसने अपना मुंह यूं फैला लिया, एक नीचे एक ऊपर, तो ग्वाल वालों ने देखा लग रहा है कोई वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की शोभा है, लगता क्या लाल लाल सड़कें हैं, जीप की तरह निकल रही हैं। वो नकली सांप को, असली सांप को भी क्या समझ बैठे? नकली गुफा समझ करके सारे उसके अंदर घुस गए। अब वो तो इंतजार कर रहा था किसका? भगवान का। अब भगवान ने कहा बताओ क्या करें, कि अकल मारी गई है नकली को। ऐसे हम भी देखना, जो पाप है ना, हम पाप को पुण्य समझ करके काम करते हैं। हम जितने कर्म कर रहे हैं क्या करते हैं? अब आजकल हत्या कर रहे हैं, क्या समझ के हत्या कर रहे हैं? इस हत्या करने से भगवान खुशी होगा, बलि देने से क्या होगा? क्या खुशी होगा? बलि देने से भगवान खुशी होंगे क्या? अरे भगवान कोई खून के प्यासे हैं क्या? अरे बलि का तात्पर्य भी लोग समझते नहीं है। पशु हत्या का मतलब क्या है? आपके अंदर जो पशुता है, जो आपके भीतर पाश है, जो बंधन है, उन बंधनों को क्या करो, मारो, समाप्त करो। उन बंधनों को तो मारते नहीं, बेचारे पशु को मार डालते हैं। बकरे, अब क्या बोलूं, बकरा काटने का मतलब क्या है, मैं का मतलब अहंकार का त्याग करो। किसका त्याग करना है, अहंकार का, मैं पने को छोड़ो। लेकिन मैं को न छोड़ करके बेचारी मैं बोलने वाली बकरी को काट डाले, बताओ क्या उससे परमात्मा की खुशी होगी क्या? बड़ा मुश्किल है। परमात्मा कभी नहीं कहते कि जीव उसकी हत्या करे, और आदमी के लिए तो और भी नहीं कहा है, क्योंकि सारे शास्त्र, और आदमी ही निरर्थक हत्या करता है स्वाद के लिए। दूसरा जीव तो यदि किसी भी पशु की हत्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्षुधा की निवृत्ति के लिए। एक मनुष्य है, यदि क्षुधा की निवृत्ति उसको सहज अन्न से हो जाए, तो भी अपने इस स्वाद की तृप्ति के लिए किसी जीते जागते खेलते कूदते पशु की हत्या कर देवे तो पाप है कि पुण्य है? लेकिन उस पाप को भी उसने क्या मान लिया है, पुण्य मान लिया। सर बता रहा हूं, यही अघासुर है, हमने पाप को ही क्या मान लिया है, पुण्य मान लिया है, और उसके बस में सारी दुनिया डूबी पड़ी है, समझ लेना। पाप को ही हम लोगों ने क्या समझ लिया है, पुण्य समझ करके उसके बस में हम सब लुटे पड़े हैं। जो है अपकार, लेकिन अपकार को हमने क्या मान लिया है, उपकार मान बैठे हैं। इसी में सारी दुनिया एक बस में हो गई है। तो इस अघासुर को भी भगवान ने क्या किया, मार करके भी कहते अनघम पाप से रहित कर दिया। जो गो गोपी नाम निकरम, जो सबको प्रताड़ित कर रहा है, गो गोपी माने इंद्रियां, चित्त की वृत्तियां, इन सबको पाप ही तो आपको प्रताड़ित करता, दुखी करता है। भगवान ने उसको भी मार करके उसको अपने लोक को, पाप के भी कर्म को पुण्य बना दिया। भगवान एक विशेषता है, जहर को भी अमृत बना देते हैं, बस बनाने की क्या चाहिए, कला चाहिए। है नहीं कला, बताओ ये जितने होम्योपैथिक की दवाई बनती हैं किससे बनती हैं, जिस तत्व से बीमारी जो पैदा होती है उसी तत्व से उसका इलाज किया जाता है। लोहा लोहे को ही काटता है। जैसे मान लो जुखाम प्याज से होता है, प्याज काटा तो क्या हो जाता, नाक बहना शुरू हो जाती है, तो प्याज के रस से ही जुखाम की दवाई बना दिया। तो जो जिसके लिए जहर बनता है, भगवान उसी जहर को ही दूसरे रूप में क्या बना देते हैं, अमृत बना देते हैं। ये भगवान की कला है, आपके भीतर की सारी पाप वृत्तियों को पुण्य में बदल देते हैं। यह भी भगवान की क्या है, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन ये वृत्ति तब बदलेगी जब आप को ज्ञान हो जाएगा। तो अज्ञान क्या है, ध्यान देना, सारे कर्म ही पाप है, सच बता रहा हूं। कर्म ही करते हो वो कर्म ही पाप है, पक्का। नहीं आपको नहीं लगता, अरे भाई आप, यो अन्यथा संतम मात्मानम, एक श्लोक है कहां का, सनत सुजाति का एक ग्रंथ है, शायद हो सकता है ये ग्रंथ इस बार पूरा हो जाएगा, अगली बार मैं वही ग्रंथ शुरू करूंगा। सनत सुजातीय, सनत कुमार ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को उपदेश दिया है, और उस उपदेश से सनत धृतराष्ट्र को बहुत फायदा हुआ। वहां बताते हैं, यो अन्यथा संतम मात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, जो व्यक्ति जैसा है अपने आप को वैसा न मान करके, कुछ और मान करके यदि कोई कर्म करता है तो उसके द्वारा किया गया हर कर्म पाप है। किन्ना तेन कृतम पापम, उसके द्वारा किया गया हर कर्म पाप है। कौन सा पाप उसने कर नहीं लिया गया है, आत्म चोरेण अपहरणा, वह आत्मा का चोर है, अपहरण करने वाला। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, हम मनुष्य हैं, पुरुष हैं, क्या है, हम पुरुष न होकर के अपने आप को स्त्री मान लेवे, स्त्री मान करके किसी पुरुष से शादी कर लेवे, जबकि हैं क्या, पुरुष ही हैं, लेकिन हमने अपने आप को क्या माना, स्त्री माना, स्त्री मान करके किससे शादी कर लिया, पुरुष से। अब आप पाप करेंगे कि पुण्य होगा, हम हैं मनुष्य, अपने आप को गधा मान लेवे या शेर मान लेवे, और शेर मान करके किसी बच्चे की क्या कर देवे, हत्या कर देवे, तो पाप होगा पुण्य होगा? तो बताओ हम क्या है, सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, लेकिन अपने आप को ब्रह्म रूप न जान करके हम क्या मान बैठे, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, पंजाबी हूं, गुजराती हूं, इंडियन हूं, लंकन हूं, आदि सब मान बैठे। अब मान करके दूसरे का हम क्या कर रहे हैं, शोषण करना शुरू कर देते, नहीं कर देते तो वो स्वाभाविक आपके द्वारा किया गया हर कर्म पाप हो जाएगा। तो भगवान अब क्या करें, जो भी कर्म करते हो उस कर्म को भगवान के साथ जोड़ दो तो वह कर्म ही पाप पुण्य बदल जाएगा। ये भक्त, अरे भाई एक माँ दूध है ना, दूध दूध फटने वाला हो जाए, खराब होने वाला हो जाए तो दूध में हल्का सा वो डाल देते हैं क्या, मैं भूल गया, कुछ डालते हैं, हाँ क्या, तो फटने से बंद हो जाता ना, हाँ तो बंद हो जाता है। तो वही दूध जो फटने वाला था, नष्ट होने वाला था, थोड़ा सा डाल दिया तो उस दूध का फटना क्या हुआ, अचार आपका खराब होने वाला था, जरा सा एक बूंद डाल दिया क्या, वो केमिकल आता है स्टिलिन एसिड क्या है का? हाँ उसको डाल दिया और डालते ही क्या हो जाएगा, फूड कंजर्वेशन वाला होता ना, फूड कंजर्वेशन सुरक्षित करने वाला, उसको एक बूंद डाल दिया, दो बूंद डाल दिया तो पूरे इतना बड़ा अचार सड़ने से क्या हुआ। तो हम जितने कर्म का विस्तार करते हैं उस कर्म में एक अंग लगा दो, परमात्मा के साथ जोड़ दो, देखो आपका किया गया पाप ही किसमें बदल जाएगा, पुण्य कर्मों में बदल जाएगा। तो भगवान के अंगों के साथ संपर्क कर दो, क्योंकि भाई देखो शरीर है तो कर्म तो करोगे नहीं करोगे, शरीर है तो पूरी तरह से बैठ ही जाओगे तो पूरे हो जाओगे नहीं, तो शरीर है तो कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा, और शरीर परमात्मा ने दिया है तो करो भी, लेकिन क्या करना है, ऐसा करो कि अघ अनघ बन जाए, क्या बन जाए, अघ अनघ बन जाए। तो अनघ कैसे बनेगा, अघ के साथ एक बूंद परमात्मा के अंग को जोड़ दो, हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं बस भावना हटा दो, कुछ नहीं करना, बीबी बच्चे परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं, किसके लिए कर्म कर रहा हूं, उस परमात्मा के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसी यदि भावना हो जाए तो बड़े बड़े पाप कर्म भी क्या बन जाएंगे, अनघ बन जाएंगे, आपके चित्त फिर कर्मों का बंधन आपके लिए नहीं होगा, मन में यदि परमात्मा आ गया तो कर्म के बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। अब यहां तक परमात्मा ने आपके विकारों को जीता, अधिकारों को जीत करके आपको शांत किया, लेकिन महाराज जी अंदर के विकार तो समाप्त हो गए नहीं हो गए, अभी तक अंदर के विकार, ये रोग बाहर के थे कि भीतर के थे, भाई चाहे रजोगुण रहा हो, चाहे अंदर का पाप रहा हो, चाहे बकासुर रहा हो, चाहे काकासुर रहा हो, चाहे यमलार्जुन रहे हो, चाहे पूतना रही हो, चाहे सकटासुर रहा हो, चाहे सिंगावर्त रहा हो, ये सब विकार कहां के थे, अंदर के। तो अंदर के सारे विकारों को परमात्मा ने क्या किया, दूर कर दिया, लेकिन बाहर से विकार आएगा तो फिर से अंदर विकार पैदा हो जाएगा। तो परमात्मा अंदर के ही रोगों का नहीं इलाज करते हैं, परमात्मा बाहर के भी सारे दुखों को आपके जीवन से बचाते हैं। ये सब राक्षसों के नाम समझ में आ गया ना, ध्यान देना, सकटासुर कौन है, सकटासुर हाँ जन्म मृत्यु का प्रवाह, त्रिणावर्त सम्मान की इच्छा, यमलार्जुन कौन है, अंतःकरण में रहने वाला राग और द्वेष, बकासुर छल कपट, काकासुर ज्यादा बोलना, ज्यादा क्या है बोलना, अद्वेष केसी रजोगुण है, रजोगुण रूपी कर्म, इन सब को भगवान क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं। तो आपके अंदर के सारे शत्रु क्या हो गए, फिनिश समाप्त। अब बाहर से जो शत्रु आएंगे वो भी तो आपको व्यथित कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कहते उसकी भी चिंता न करो, परमात्मा बाहर के भी सारे शत्रुओं को मार करके आपका कल्याण करते हैं। कौन कैसे बता रहे हैं परमात्मा, तो 232वां श्लोक हम लोग करते हैं, पित्वा अरण्य हुतासनम असह्य तत तेजसो हेतो दग्धान मुग्धान अखिलान जुगोप गोपान कृपा सिंधु। कहता असह तेजस है, जिसका जो अपनी तेज के कारण बहुत असह था, जिसके तेज को सहना संभव नहीं था, ऐसे वन में लगे हुए दावा नल को, कौन सी अग्नि को, दावा नल को भगवान ने पी करके दग्ध और मुग्ध हुए समस्त गोपों की भगवान ने क्या कर दिया, रक्षा कर दिया। ये कथा तो आप लोग जानते ही जानते हो। जब खेल कूद में लगे थे तो गायें चलते चलते बहुत दूर एक मुंजा वन में चली गईं। जब वहां सब ग्वाल वाल ढूंढते हुए गए तो गायों को बुलाने की चेष्टा कर रहे थे, तब तक उस जंगल में आग लग गई और इतनी तेज आग लगी, हवा बहना शुरू की कि चारों तरफ से गायों को आग ने क्या किया, घेर लिया। अब लगा कि सारी गायें मरी, तो सारे बच्चे गोप बालक भगवान की शरण में गए और भगवान ने क्या किया, कहा तुम सब आंख बंद कर लो, मैं पी जाता हूं सारी आग। सारे आग को क्या किए, पी गए। एक के बाद यहां पिए, दूसरी बार आगे जाके पीते हैं जब काली दह के समय में, जब भगवान काली नाग को नाथ करके बाहर निकले तो सब थके हारे थे, जमुना के किनारे रात में सो गए और सोते हुए रात में आग लग गई तो सब छटपटाना शुरू कर दिए, तो भगवान उनके देखते देखते सारी आगों को क्या किया, पी गए। तो भगवान हमारे जीवन में तीन तरह के दुख आते हैं, आध्यात्मिक दुख या दुख माने ताप कह लो, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप। भगवान इन तीनों तापों को दूर कर देते हैं, इसलिए तीन बार, एक विष रूपी अग्नि को किया, विषाग्नि, काली नाग में जो विष था उस विष रूपी अग्नि को क्या किया, उसका जल भी कोई नहीं पीता था, जल भी जहरीला सा बन गया था, तो उसको पी लिया। दूसरा मुंजाग्नि, जो मूंज में आग लगी, और तीसरा वहां जंगल में आग लगी। तो तीनों अवस्थाओं में भगवान ने आपके तापों को क्या किया, दूर किया। तो तीन आग पीने का मतलब क्या हुआ, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तीनों तापों से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। एक जगह दिन में पिए हैं, एक जगह रात में पिए हैं, तो भगवान परोक्ष और अपरोक्ष हर पल आपकी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, तब परमात्मा सहायता नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है बताओ। अब रास्ते में जा रहे थे, बड़ी तेज गर्मी लगी, क्या लगी, बहुत तेज गर्मी लगी। अब गर्मी से यदि पसीना न बहा होता शरीर में तो सूर्य की गर्मी और चमगड़े क्या हो जाते, काला पक जाता, कभी देखा नहीं, देखा है, मुंबई वालों को गर्मी का एहसास नहीं है, राजस्थान वालों से पूछो अथवा उधर वालों से पूछो, पूरी चमगड़ी में काला एकदम, जिसे जला हुआ वो धब्बा हो एकदम पक जाता है। तो परमात्मा ने पसीना बहा करके चमगड़े और उसके बीच में क्या किया, एक लेयर खड़ा कर दिया गर्मी के बीच में, और आपको गर्मी से क्या किया, बचा लिया। तो बताओ इन तापों से बचाने वाले कौन है। अच्छा, आपको कोई बीमारी आई शरीर के भीतर गई तो सबसे पहले शरीर ही उसका प्रतिकार करता नहीं करता, अरे भाई हड्डी टूट गई तो डॉक्टर जोड़ता है कि परमात्मा जोड़ता है, सही बताना, डॉक्टर तो बात से पट्टी बांध करके सीधा कर देता है, हड्डी जोड़ने की कोई दवाई नहीं डॉक्टर के पास, बस सीधा जोड़ देता है। घाव जो होता है शरीर में वो परमात्मा भरता है कि डॉक्टर दवाई लगा के भरते हैं। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, शाम को आएंगे, दोपहर में आएंगे, अभी स्वाध्याय में आएंगे। दवाई तो मात्र बाहर का कोई जर्म से उसके अंदर घाव न करे, लेकिन घाव को भरने वाला कौन है, अंदर वाला डॉक्टर है। तो सारा इलाज कौन कर रहा है, आप तो आपका घर का एक फैमिली डॉक्टर होगा, वो तो फोन करोगे तो आएगा, लेकिन परमात्मा हमारा ऐसा फैमिली डॉक्टर है कि सोते वक्त, जागते वक्त, चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, हर पल आपके साथ रह करके आपके हर रोगों की दवाई करता रहता है और न चाहते हुए भी खिलाता रहता है। सही बता रहा हूं, नाक में धूल घुस गई, अब बताओ उस धूल को कैसे निकालोगे, तुरंत छींक आई, छींक आकर के अंदर की, हमने तीन दिन सही बताया, यहां घूमने जा रहा था, एक पता नहीं पतला सा बहुत चूड़ा मुंह में घुस गया, हमने कहा क्या करूं, निकालने का प्रयास किया नहीं निकल पाया, तो हमने कहा अंदर ही कर लें और क्या करें, बहुत पतला सरा होगा, लेकिन अंदर जा ही नहीं पाया। सही बताऊं, उल्टी सी आकर के उस कीड़े को जब तक नहीं निकाला उसको चैन नहीं आया। किसको? तो बताओ सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है? लेकिन आपको इस डॉक्टर पर भरोसा है क्या? ये दुनिया का डॉक्टर पर भरोसा होगा। लेकिन आंख में कोई चीज घुस जाए देख लो उसको कौन निकालने वाला होता है? कीचड़ बना करके ही निकाल के बाहर कर देगा। तो परमात्मा हर दुखों से हमारी क्या कर रहे हैं? हर पल रक्षा कर रहे हैं। आगे भी भाई कहां कहां रक्षा कर रहे हैं इससे चर्चा, लेकिन विषय बहुत हमें वो लग रहा है गंभीर, और पूरा भागवत का एक निचोड़ है, भागवत का एक साधनात्मक निचोड़ है कि हमारे जीवन में सब कहां घटित हो रहे हैं। हमें भी इस बात पहली बार आपको बता रहा हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।